शांति। अभी हमारे बीच में विशेष बाबा के रतन आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी हैं, सभी कत्तक ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। आप 1962 में इस विद्यालय के संपर्क में आए, लौकिक पढ़ाई में इंजीनियरिंग में मास्टरी और अधिक शिक्षा पूर्ण कर आप 28 वर्षों तक ONGC में कार्यरत थे। बिहार, असम, गुजरात, ऐसे कई स्थानों पर आपने बाबा के घर आश्रम खुलवाने के निमित्त बने हैं। आप 1996 में सेवाओं में संपूर्ण रीति समर्पित हुए। वर्तमान समय आप ज्ञान सरोवर में एकेडमी कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, विशेष वक्ता हैं, ट्रेनर्स भी हैं और देश विदेश में विभिन्न स्थानों पर जाकर ज्ञान के गहराई को बहुत सहज रीति से आपने स्पष्ट किया है। आप इस ज्ञान के कई सारे गहरे रहस्यों पर बुक्स भी लिखी हैं आपने। विशेष सेवाओं के लिए भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से आपको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। जैसे 1992 में भारत नेपाल पर्यावरण कैंपेन में आपको पर्यावरण स्वरूप भारत परिणाम स्वरूप भारत सरकार की ओर से पर्यावरण श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और एक विशेष बात, आपको साकार बाबा की पालना लेने तथा उनकी अंतिम कर्मातीत अवस्था का साक्षात्कार करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों में लास्ट टाइम में भाई साहब यही थे, बाबा के सन्मुख ही थे। और विशेष आज का जो विषय है वो भी इसी से रिलेटेड ही है कि ब्रह्मा बाप समान संपूर्णता की ओर हमारे कदम बढ़े, इसी विषय में भाई साहब अपना स्पष्टीकरण, अपने अनुभव, अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे। आदरणीय भाई जी,
ओम शांति। अभी हम सब बाबा का गीत सुन रहे थे। क्या गीत की लाइनें थी, इतना प्यार कौन देगा, बाबा आपकी याद रह रह कर आए। तो जब भी कोई बाबा से संबंधित गीत सुनते हैं तो स्वतः ही बाबा के साथ बिताए हुए कुछ स्वर्णिम क्षणों की यादगार आ जाती है। आज जब बहन जी कह रहे थे कि बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, जब बाबा मनसा सेवा की ओर बाबा का इशारा था तो बाबा ने कहा था कि बाप समान यदि कर्मातीत अवस्था पाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, अपने एक एक कर्मों को बाबा के कर्मों के साथ टैली करते चले। तो जो भी जिसका रोल मॉडल होता है, जिसके सामने जो लक्ष्य होता है, स्वतः ही व्यक्ति की एक्टिविटी, उसका बोलना, सोचना, करना, व्यवहार उस अपने रोल मॉडल यानी जो लक्ष्य होता है उसकी तरह होता जाता है। हमें याद है जब हम लोग पढ़ा करते थे और साथ में बाद में जॉब किया इंजीनियरिंग पास करने के बाद, तो हमारा एक साथी होता था, उसे फिल्मों का बहुत शौक होता था। تو فلم کے کوئی ہیرو اس کے رول ماڈل ہوتے تھے تو بس ان ہیرو کی طرح وہ ان کے ڈائیلاگ بولتا تھا، ویسا اس کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، ویسا ویوہار ہوتا تھا، اور بعد میں دھیرے دھیرے کر کے وہ اسی میں ہی پارنگت ہو گیا۔ ایسے ہی اگر ہماری بدھی میں ساکار باپ دادا کا، ہماری نمت دادیوں کے جیون کے کچھ جو چھن ہے، جو ان کی کاریہ ویوہار کی شیلی ہے، وہ سب بدھی میں رہے گی تو سوتہ ہی ہم اپنی سمپورنتا کی اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم سب نے یگیہ میں پڑھا ہے، ہسٹری میں پڑھا ہے کہ بابا برہما بابا بھی سادھارن ویکتی کی طرح تھے، ہیرے جواہرات کے ویاپاری تھے، لیکن جب ان کی 60 ورش کی آیو ہوئی تو سب سے پہلا انوبھو انہوں نے جیون میں کیا کیا، وہ انہیں ایکانت پریہ لگنے لگا، اور ایکانت پریہ وہ ہونے لگے، ایکانت میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، وچار ساگر منتھن کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے جیسے کہ انہیں ورکتی بھاؤ پیدا ہونے لگا۔ ہمیں کئی بار نرمل شانتا دادی، ان کی جو یہاں پر ہے بچی نرمل شانتا دادی جی، جو باپ دادا سے ملنے بھی ویل چیئر پر آتے ہیں، تو ان سے بھی کئی بار ملنے کا سوبھاگیہ ملا، انوبھو سننے کا، تو بتایا کرتے تھے کہ پہلے بھی ہم بابا کے ساتھ ہل اسٹیشن پر جاتے تھے چھٹیوں آدھی میں، لیکن 60 ورش کے بعد جب سے بابا کو کچھ ساکشاتکار ہوئے، ایکانت انوبھو ہونے لگا، تو بھلے ہم لوگ کشمیر بھی گئے اس کے بعد جاتے تھے، لیکن بابا بالکل جیسے کہ ایکانت میں جانے لگے۔ تو ایک تو ہم یہ بھی اپنے کو ٹیلی کرتے چلے، دیکھتے چلے کہ ہم سنسار میں رہیں لیکن سنسار ہمارے میں نہ رہے۔ بہت سنسار کی باتیں ہوتی ہیں، اسی پر ہی وچار چلنا، ڈسکشن کرنا، سمے دینا دنیا کی باتوں میں، وہ سب سے جیسے ہمارا من جو ہے الگ ہوتا جائے۔ تو بابا میں ایک یہ پریورتن شروع سے جو دیکھنے میں آیا، تو ایک تو ہم یہ دیکھتے چلے۔ دوسرا، ہم لوگوں نے سنا ہے، یہاں پر ابھی بھی 2 ڈائری رکھی ہیں جو بابا کے ہاتھ کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو بابا نے کیا ابھیاس کیا، آپ سب نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا جیون کہانی میں، کیا ابھیاس بابا نے کیا؟ پہلا ابھیاس تو بابا نے یہی کیا کہ بھئی میں آتما ہوں، اور جہاں ویکتی کی بدھی جا سکتی ہے، بچوں کی طرف، پتنی کی طرف، ویوہار کی طرف، بزنس کی طرف، تو سبھی سمبندھت لوگوں کو لکھ کر کے بابا نے پکا کیا کہ بس میں آتما ہوں، جسودا آتما ہے، نرملا آتما ہے۔ جسودا بابا کی یگل کا نام تھا، نرمل شانتا بابا کی پتری کا نام، نارائن آتما ہے، نارائن بابا کے پتر کا نام، آتما ہے، یہ آتما ہے، یہ آتما ہے۔ تو اس سے بابا کو یہ اتنا پکا ہو گیا کہ میں آتما ہوں، اور ہر جس بھی بھائی بہن کو، بچے کو بابا دیکھتے تھے، وہ بھی آتمک استھتی کا انوبھو کرتا تھا۔ اور جب بابا سے ملتے تھے، بابا کا چتر دیکھا ہوگا نا آپ نے، بس ایسے ہاتھ، آؤ بچے، آؤ میٹھے بچے، بس یہ پریکٹیکل میں جب بھی بابا سے ملتے تھے، بابا ہاتھ بڑھا دیتے تھے، اور آتمک درشٹی سے جیسے ہی بابا دیکھتے تھے، ہم لوگ بابا کی باہوں میں جاتے تھے، اور دیہ کا بہن ایک دم بھول جاتا تھا۔ کیوں بھول جاتا تھا؟ کیونکہ بابا نے اپنے کو اتنا پکا کیا ہوا تھا، میں آتما ہوں، یہ آتما ہے، جس کی طرف دیکھتے تھے درشٹی بھی ویسی، آتمک بھاؤ ویسی، وائبریشن ویسا ہی، بابا کا اورا لائٹ کا۔ تو یہ بھی ایک ہم چیک کرتے چلے کہ ہم بھی جس ویکتی کی طرف دیکھیں، جس کا بھی درشٹی دیں، بس وہ آتما بھی بھلے تھوڑے سمے کے لیے جیسے دیہ بان سے مکت ہو جائے، جو بابا ہمیشہ کہتے ہیں. اور پتہ کیسے چلتا تھا ہم سب لوگوں کو بھی کہ جیسے ہی بابا نے درشتی دی دیوان سے مکت ہو کے ایک دم جیسے اتیندری سکھ کا انبھو ہوتا تھا. اور پھر چونکہ پارٹی ہوتی تھی بابا سے ملنے آتے تھے ایک کے بعد ایک کو آنا ہوتا تھا تو بابا پھر دھیرے دھیرے ایسے تھپتھپاتے تھے جیسے کہ پھر سے ہم دیہ میں آئیں. اور پھر بابا ٹولی دیتے تھے حال چال پوچھتے تھے اور پھر ہم بابا کی بہاؤں سے الگ ہوتے تھے. پھر دوسرا آتا تھا تیسرا آتا تھا لیکن یہ انبھو سب کا ہوتا تھا کہ ہم جیسے دیہ سے نیارے ہو گئے اشریری ہو گئے کیونکہ بابا کی اتنی پکی پاور فل اسٹیج آتمک سوروپ کی. تو ایک یہ ہم ٹیلی کرتے چلے کہ بھلے ملیں بھوتک ریتی سے نہ صحیح جس کو درشٹی دیکھیں جس سے بات کریں ہمارا ایسا وائبریشنز ہوں درشٹی میں اتنی شکتی ہوگی تھوڑے سمے کے لیے بھی اسے دیہ بھان سے مکت کرتے. اور ساتھ میں کیا دیکھتے تھے آپ سب نے پڑھا ہوگا ایک ڈائری میں تو یہ بابا نے لکھا ہے. دوسری ڈائری میں بابا نے کیا لکھا ہوا ہے جو بابا کئی بار اویکت مرلی میں بھی بابا نے اس کو ریفر کیا ہے اپنی روز دربار لگاؤ. کن کی دربار لگاؤ جو آپ کی سوکشم کرم اندریاں ہیں من بدھی اور سنسکار کی. اور بابا کی اس سیزن کی تو مرلیوں کی وشیشتا خاص یہ ہے جو بابا نے من کے اوپر ہی وشیش چلائی ہیں کہ من جیتے جگت جیت. من میں پچھلی مرلی بھی تھی من کو ویرتھ سنکلپوں سے مکت کرو. پچھلی شیوراتری کو یہ شیوراتری نہیں 2010 کی شیوراتری میں بابا نے کون سا دان مانگا تھا کون سے اک کے پھول کا دان ویرتھ سنکلپ کا. تو اس سیزن کی ابھی پچھلی مرلی میں 2010 میں دیکھو ایک ایک مرلی کو جب ہم ادھیان کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا بابا جیسے ہمیں دھیرے 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 ستھول سے اور سوکشم کی اور لیتا چلا جا رہا ہے. پچھلے ایک سال پہلے کی شیوراتری میں بابا نے کہا تھا کرودھ روپی اک کے پھول کا دان کرو. کرودھ کا ستھول روپ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنے میں آتا ہے بول سے دیکھنے میں آتا ہے کرم سے بھی دیکھنے میں کرودھ کا روپ آتا ہے یہ ستھول ہے. لیکن اس شیوراتری پر بابا نے کیا بولا ویرتھ سنکلپوں کا دان. یعنی کہ بابا پچھلے سال جو بابا نے کہا اب اور اس سے ادھک سوکشم کی اور لیتا چلا جا رہا ہے. ہمیں بھی یاد ہے جب ہم لوگ گیان میں آئے 1962-63 میں اس سمے بابا کی جو ساکار مرلیاں چلا کرتی تھی اس میں بابا کہتے تھے کہ بچے اپنے اوپر یہ اٹینشن رکھنا ہے کہ کرمیندریوں سے کوئی وکرم نہ ہو اس سے وکرموں کا کھاتا بنتا ہے. باقی منشا میں تو طوفان انتک آئیں گے وہ سوکشم ہے واچا سے دھیرے 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 بابا کا واچا پر آیا کرمنا سے واچا کہ اگر کسی کو شبدوں سے بھی دکھ دیا تو دکھی ہو مریں گے. تو واچا کے اوپر بھی اتنی اٹینشن. پھر دھیرے دھیرے ہمیں یاد ہے جب 67-68 کی آپ مرلیاں سنیں گے ساکار باپ دادا کی 68 اور 67 اور 68 کی تو اس میں بابا اور سوکشم تاکی اور لیتے چلے کہ من کے اندر بھی جو سنکلپ ہوتے ہیں ویسا وایو منڈل بنتا ہے. اتنی شدھتا ہو اتنی پوترتا ہو کہ من کے سنکلپ بھی پوتر ہو وتی بھی پوتر ہو یہاں تک کہ سوپن میں بھی کوئی اشدھی کا بھاؤ نہ ہو. تو دیکھو بابا دھیرے 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 ہمیں ایک دم اتنے سوکشمتا کی اور لیتے چلے جا رہے ہیں جو کہ کرماتیت اوستھا کا سوچک ہے کہ کیول باہر کا ہی پرشارت نہیں لیکن اندر کا اتنا گویتا کا پرشارت. اس لیے بابا بھی سمپورن کرماتیت کیوں بنے اتنی جلدی کتنے سال کے پرشارت میں صرف 32-33 वर्ष के पुरुषार्थ। बाबा को ज्ञान मिला 1936 में, 36-37 में, और 69 में, 1969 में तो बाबा कर्मातीत हो गए। केवल 32 वर्ष के पुरुषार्थ में ही इतने 63 जन्मों के विकर्म भस्म कर लिए, इतना कर्मातीत अवस्था को बाबा ने प्राप्त कर लिया। कैसे? क्योंकि बाबा का ना जो भी ये ज्ञान की बात थी, बाबा ने अपने जीवन में बड़ी सीरियसली लिया उसे, एक एक पुरुषार्थ को इतना गुह्यता से लिया, और इस कारण से बाबा इतनी जल्दी, नहीं तो वो भी साधारण हीरे जवाहरात के व्यापारी, उसके बाद 1969 में एकदम कर्मातीत हुए। कैसे हुए? क्योंकि जो जो ज्ञान की बात, जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे बस कोई परिस्थिति आए तुम्हारी खुशी गायब ना हो, हमेशा बाबा कहते हैं ना, खुशी गायब ना हो। और ये बाबा के चेहरे पर भी झलकता था, इतना बड़ा यज्ञ, इतना सारा कारोबार पूरे यज्ञ का, लेकिन बस बाबा के जो हिस्ट्री हॉल में आप लोग गए होंगे ऊपर माउंट आबू में, या जो नहीं गए होंगे वो जाकर देखेंगे, जहाँ पर बाबा क्लास कराते थे उन दिनों वही हॉल होता था। तो एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र होता था, लक्ष्मी नारायण का चित्र, ट्रांसलाइट का चित्र होता था, और बाबा की उम्र तो कितनी थी, 92 ईयर, 93 ईयर, इतनी तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम होती है वृद्धा, तो बाबा को खांसी भी आती थी कई बार, खांसते खांसते कई बार तो बाबा का आंखें भी गीली जैसे हो जाते थे। तो बाबा कई बार हंसी में कहते थे, आपने साकार मुरली में सुना होगा ना, क्या सुना, बाबा कहते थे, बाबा बस आपने मेरे तन का आधार लिया है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की रू रूहान चलती थी, ब्रह्मा बाबा कहते थे, बाबा आपने मेरे तन का आधार लिया है, इसका द्वारा आप ज्ञान सुनाते हो, तो देखो जी मुझे इतनी खांसी आती है, चलो इसमें इस खांसी से मुझे राहत दो। बाबा कोई भी बाबा की जो ये रूहान होती थी तो शिव बाबा क्या रिप्लाई करते थे, मुरली में भी आता है, बच्चे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, तुम्हारे कर्मों से जो भी तुमने जो किया उसका भोग तो चुक तो करना ही पड़ेगा। तो देखो ब्रह्मा बाबा को भी कोई कंसेशन नहीं, क्योंकि जो भी हमने कर्म किए हैं उन कर्मों का हिसाब किताब तो हमें इस शरीर से चुकतू करना ही है। तो जब ब्रह्मा बाबा को कोई कंसेशन नहीं, तो आपको या हमें किसी प्रकार का कोई कंसेशन होगा नहीं। तो इसीलिए ये नहीं सोचना कि बाबा ब्रह्मा बाबा इतनी जल्दी अव्यक्त या संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पा लिया क्योंकि शिव बाबा उनके तन का आधार लिया और बाबा को ये कंसेशन मिल गया। कोई कंसेशन नहीं, शिव बाबा हमेशा कहते थे जो भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है वो तो चुक तो करना ही पड़ेगा। तो फिर भी बाबा 32-33 वर्ष में कर्मातीत बन गए। अभी हम सब में भी अनेकों ऐसे हैं, उससे ज्यादा साल हो गए, हमें भी 45 साल से ज्यादा हो गए, बहुत सारे हैं, लेकिन हम सब पुरुषार्थी हैं। लेकिन बाबा के जीवन से ये प्रेरणा लेने की है कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है जो हम सबको, तो बाबा की कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और उनमें एक विशेष बात यह है कि जो बाबा चित्र को तो इतनी खांसी भी आती थी, फिर भी बाबा कहते थे, अरे बच्चे देखो यहाँ बाबा इतना बूढ़ा है, ये खांसी आती है, ये समस्या होती है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, विष्णु कृष्ण, नया शरीर मिलेगा। तो उस स्मृति में, भविष्य की स्मृति से इस जन्म की जो कष्ट थे, दुख थे, रोग थे, वो सब विस्मृत हो जाते थे, और इस जन्म की कोई भी भोगना का भाव उनके चेहरे से, बाबा के चेहरे से झलकता ही नहीं था। तो एक बात ये है कि भविष्य की भी हमारी स्मृति इतनी शक्तिशाली हो, हम सब भी जाके विश्व महाराजन, विश्व महारानी, देवी देवता ऐसे बनने वाले हैं। तो इस जन्म में परीक्षाएं बहुत आएंगी, देह की भी होगी, संबंधियों की या दूसरी अनेक प्रकार के, لیکن وہ چیز ہماری خوشی میں بادھک نہ بنے. اسی لیے بابا کہتا تھا بچے کیا کرو, خوشی میں کھگیاں مارو. ہاں سندھی شبد ہے کھگیاں. کیسے مارتے ہیں بچے کھگیاں معلوم ہے؟ تو بابا کئی بار کر کے بھی بتاتے تھے کیسے. ہاں کھگیاں ہوتا ہے نا, تو بس خوشی ہو کل جا کے میں یہ بنوں گا کرشن, تو کل جا کے میں ہم یہ بننے والے ہیں. ایسے بابا اتنی آیو یہ کر کے بتاتے تھے, اور سارے بس چہرے پر وہ خوشی کا بھاؤ رہتا تھا کہ شریر کی سمسیا ہو, کوئی پریکشا ہو, کوئی بچوں کی بات ہو. اتنا بڑا یگ تھا, پرابلم تو بہت آتی ہیں, لیکن وہ جو خوشی تھی بھوشیہ کی خوشی, وہ ورتمان کی سمسیاؤں کے اوپر بھاری پڑ جاتی تھی, اور اسی لیے بابا سدا خوش رہتا تھا. تو ایک تو ہم یہ بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے چلے, جتنی جو جو بات بتائی نا, چار پانچ بات اور آگے ایسی لگ بھگ 12-13 باتیں ہیں جو میں یہاں کنڈینس کرنا چاہوں گا. تو یہ خوشی کا بھاؤ ایسا رہے. اور کیا ساتھ ساتھ یہ دیکھا, پہلے بابا کافی سمے دیتے تھے, ہم لوگ جاتے تھے بابا سنا کرتے تھے سماچار. ہاں ہاں بچے یہ سماچار, اچھا ایسا کرو ایسا ہو جائے. ابھی بھی بابا کے پتر ہیں, ہمارے پاس بھی پتر ہیں, اور جو پرانے بھائی بہن ہیں ان کے پاس بھی پتر ہیں. کتنا ڈیٹیل میں بابا سماچار لال لال اکشروں سے لکھا کرتے تھے, اور اس میں سندھی میں بابا پتر لکھتے تھے اور ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے ایشو دادی جی بھیجا کرتے تھے, جس سے کیونکہ سندھی آتی نہیں ہندی میں وہ پڑھا کرتے تھے. اور بابا کا یہی ہوتا تھا ہر پتر میں بھی, نور رتن سدرشن چکرداری برہمن کلبھوشن بابا کے دل تخت نشین فلانا فلانا بچوں کے نام موہن بچے پرتی یا جو بھی ہوتا تھا بابا لکھ کر کے اس کے بعد پتر شروع کیا کرتے تھے. یہ ہمیں اور کیا شکشا دیتا ہے کہ جس بھی بھائی بہن سے جس بھی ویکتی سے ہم کاریہ ویوہار میں آئے, پہلے اس کے سمان میں ہم استھت کرتے ہیں. جن سے بات چیت کریں بولنے میں آئیں, ان آتما کو ایک تو آتمک درشٹی سے ہی دیکھیں, نہ دیکھیں ہی صرف بلکہ اپنے بول کے دوارا ان کو اتنے ان کے سمان میں استھت کر دیں کہ وہ آتما بھی ایک بالکل جیسے لوکک میں ریسپٹیو موڈ میں آ جائے. اب جب جو سمان میں استھت ہو جاتی ہے آتما, پھر وہ دوسرے کی باتوں کو سہج سویکار کر لیتی ہے, کیونکہ وہ پوزیٹو آتما اتنی پوزیٹو ہو جاتی ہے کہ ہم جو بھی بات بولیں گے وہ اسے سویکار. اسی لیے ہر ایک سے بابا سے ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ جتنا بابا مجھے پیار کرتا ہے اتنا کسی کو نہیں کرتا. ایک بچے کو یہ لگتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو سمان میں استھت کر کے نینوں کے دوارا اپنے ویوہار کے دوارا اس کے بعد بابا کاریہ ویوہار میں آتا تھا. اور اسی بات کو ہی بابا مرلی میں کہتے ہیں نا, کتنی بار کہا کہ تینوں پرکار کی سیوا اکٹھی کرو. کون سی تین سیوا؟ منشا واچا کرمنا. منشا سے سکاش دو, شکتی دو. واچا سے کیا کرو؟ جو گیان دان کرو. اور کرموں سے ویوہار سے گنوں کا دان کرو, جو ہمارے اندر گن ہیں شکتیاں ہیں وہ. لیکن اس میں سب سے زیادہ وائٹل یہ ہے کہ منشا سے سکاش دو, شکتی دو. تو یہ ویوہار یہ بابا پریکٹیکل میں کرتا تھا, اس کارن سے ہر ایک کو یہ محسوس ہوتا تھا بابا جتنا پیار مجھے کرتا ہے اتنا کسی کو نہیں. یعنی بابا نے دلوں پر راجیہ کیا. آج اگر کوئی اپنی پوزیشن سے راجیہ کرتا ہے, لوکک دنیا میں یہی ہوتا ہے, جس کی جو لوکک پوزیشن ہوتی ہے اس کے انوسار اسے لوگ دل سے نہ صحیح کم سے کم دکھانے کا تو مان دیتے ہی ہیں, دینا پڑتا ہے, کاریہ ویوہار نکالنا پڑتا ہے. لیکن بابا نے دلوں پر اسی لیے راجیہ کیا کہ بابا ہر ویکتی کو ہر بچے کو بس اس سوروپ میں دیکھتا تھا, اپنے فائنل سوروپ کی استھتی میں. یہ وہ ورتمان سوروپ میں نہیں ہے, فائنل سوروپ میں. یہ میرے وہی بچے ہیں जो होवनहार विश्व महाराजन है, विश्व महारानी है, कलप पहले भी इन्होंने ये पद पाया था, अभी भी पा रहे हैं, वर्तमान में भले ये साधारण दिख रहे हो। तो बाबा यही बात हम बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि हम भी किसी को वर्तमान स्वरूप में ही न देखें। इसलिए बाबा की जो मुरली चली थी वो चार बताया ना, ज्ञान योग और ये बात की, बच्चों को ये भी निश्चय है, अपने में निश्चय है, हाँ हम आत्मा है बन जाएंगे, बाबा में भी निश्चय है कि बाबा सर्वशक्तिमान है, सिखाने वाला है, ड्रामा में भी निश्चय है कि ड्रामा में जो हो रहा है ठीक, ये तीन बिंदी की बात ठीक कही है। चौथा मुश्किल किस चीज में है, बाबा ने क्या बताया मुरलियों में, बच्चों को कौन सा मुश्किल लगता है, परिवार में, याद आती है ना मुरलियां, कि परिवार में जब हम किसी की कोई बात देखते हैं, और ये इतने 50 साल पुराने, इनमें भी ये बात, मैं तो अभी 10 साल पुरानी हूँ, मैं तो अभी 15 साल पुराना हूँ, मेरे में भी अगर ये हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो जब परिवार की कोई बात हम देखते हैं वो हमें प्रभावित करती है, तो बाबा कहता है क्यों प्रभावित करती है, क्योंकि हम केवल उसका वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं। इस समय ये आत्मा में के द्वारा इतने साल हो गए, फिर भी इनके अंदर क्रोध है, फिर भी इनके अंदर ये संस्कार है, इस रीति से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं हमेशा हरेक को त्रिकालदर्शी होकर देखो, ये साधारण आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की चुनी हुई आत्मा, भगवान ने सेलेक्ट किया है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। हम उसे वर्तमान में स्वरूप में, उस स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन चूंकि भगवान ने, बाबा ने चुना है, और बाबा ने कई बार कहा है कि अंतिम से अंतिम बच्चा भी जो ब्राह्मण बच्चा है वो भी वर्तमान में जो बड़े से बड़े आत्माएं हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनसे भी वो महान बच्चा है, इसलिए वो भगवान की नजरों में आया है, इसीलिए भगवान ने उसे चुना है। आज भले हमें उसका शक्ति का भान नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान को उसके द्वारा कोई ना कोई ऐसी सेवा करानी है कि जिसके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, इसलिए वो साधारण आत्मा नहीं है। देखने में भले साधारण हो, व्यवहार साधारण हो, ये चीजें साधारण हो, लेकिन वो आत्मा एक भी बाबा का बच्चा साधारण नहीं है। भगवान की दृष्टि पड़ी है, भगवान ने लाखों करोड़ों आत्माओं में से उसे चुना है, वो साधारण नहीं हो सकती। तो जब भगवान की नजरों में इतनी महानता है एक एक आत्मा के लिए, हम उसे साधारण रूप में देख करके उसके साथ वैसा व्यवहार कर लेते हैं, उसे हम समझते हैं कि ये आत्मा में ये संस्कार क्यों है, ऐसी बात क्यों हो रही है। तो बाबा ने कभी भी किसी को साधारण स्वरूप में नहीं, बड़े महान रूप में देखा। एक ये हम धारण और करते चले कि हरेक को हम त्रिकालदर्शी, ये साधारण नहीं है, ये वही विश्व महाराजन आत्मा है, कलप पहले भी बाबा से ये बनी थी और अभी बन रही है और अंत में बन ही जाएगी, हुबहू कलप रिपीट होता है पूरा, तो इस कारण से बनना ही है, बस ये स्मृति रहेगी। तो फिर हम किसी को साधारण रूप से देख करके उसके साथ साधारण रूप में व्यवहार नहीं करेंगे, उसके साथ हमारा व्यवहार भी बड़ा उच्च श्रेणी का, उच्च कोटि का अपने आप होता जाएगा। और इसीलिए बाबा ने कहा है हरेक को कितने सर्टिफिकेट लेने हैं, कितने सर्टिफिकेट लेने हैं, तीन, याद है ना सबको, किस किस से सर्टिफिकेट लेने हैं, भगवान से सर्टिफिकेट लेना है, प्रभु पसंद बनना है, और जग पसंद बनना है, और मन पसंद बनना है, यानी परिवार पसंद। तो एक एक सर्टिफिकेट के लिए केवल एक बात हम याद रखें, बस प्रभु पसंद बनना है ना, तो एक बात कौन सी याद रखे तो ऑटोमेटिकली प्रभु पसंद बन जाएंगे। भगवान कहता है ना, भगवान को कौन पसंद है, स्लोगन याद है ना, राजी साहब राजी, किस पर साहब राजी, सच्चे दिल पर
साहब राजी।
बस हम इसीलिए भगवान का नाम भी है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, सच्चा है वो बाबा। तो जैसा होगा उसको वैसा ही व्यक्ति वो पसंद होगा, तो इसीलिए हमें भी बाबा चाहता है बस हम बाबा से सच्चे बन जाए तो भगवान पसंद हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा है, लेकिन पहचान क्या, हम क्या, मैं तो भाई बहुत सच्चा हूँ। सच्चे की पहचान क्या है, दूसरा स्लोगन याद रखे इसमें, हा? बाबा ने क्या कहा है, जो सच्चा होगा तो कहते हैं ना सच तो बिठो नचा, सच्चा जो होगा उसका खुशी का पारा कम नहीं होगा, वो खुशी में नाचता रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का देखा ना, बस बाबा को हमेशा ऐसा खुशी रहती थी हर चीज में, कभी भी बाबा को ये नहीं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये प्रश्न कभी नहीं आता था। तो सच तो बिठो नच। और साथ साथ और बाबा ने क्या बताया इसमें, सच वाले के सामने क्या आएगी, परीक्षाएं आएंगी, सच की नाव हाँ डोले लेकिन डूबे थे, तो डोलेंगी, परीक्षाएं होंगी, लेकिन ये अंदर का विश्वास हो मेरी विजय निश्चित है, भगवान हमारा केवल हार है, तो बस। तो इससे ऑटोमेटिकली भगवान का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रभु पसंद बन जाएंगे। तो बाबा को हर बाबा का एक्टिविटी में ये रिफ्लेक्ट होता था, दिखता था कि बस इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आती थी लेकिन हम अपनी महानता को ना छोड़े। हमें याद है एक बार कलकत्ता में प्रदर्शनी वगैरह लगाई थी और दूसरे आर्य समाजी थे, दूसरे जो हमारे विरोधी थे, उन्होंने आग लगा दी, हमारे चित्र वगैरह जल गए। और ये तब हमारे कुछ बहुत पुराने भाई लोग थे, वकील थे, उन्होंने बाबा को बोला बाबा हमारे पास प्रमाण भी है और हम अगर ये केस करेंगे तो हम 100% जीतेंगे, हमें ये करना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, भले जितना भी हमें वो हो लेकिन बाप कभी भी बच्चों पर केस नहीं कर सकता, उन बिचारों को अज्ञान है, उन्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, किसका कार्य में क्षति पहुंचाई है। तो ये क्षमा का भाव, बस कभी भी किसी के प्रति केवल कहने का ही न रहे, बदला न लो बदल के दिखाओ, लेकिन हमारे व्यवहार में रहे क्षमा। इसीलिए कहते हैं कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा ना वो क्षमा नहीं कर सकता, जो कमजोर होगा उसमें हमेशा ये बात आएगी बदला लेने की, मैं भी ये करूं ऐसा करूं। लेकिन जो भी महान आत्माएं होती हैं, महावीर हैं, गौतम बुद्ध हैं, मदर टेरेसा, जिन भी महान आत्माओं का उनका देखो सबसे बड़े से बड़ा गुण क्षमा का था। तो ये हम अपने अंदर ये भी चेक करते चले कि अगर किसी ने कुछ भी करा हो उसके प्रति हमारा क्षमा भाव कि बस ये आत्मा पार्ट बजा रही है, मेरे मन के अंदर उसकी कोई लेप छेप ना हो, वो कांटा छुपता ना रहे, इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करके दिया, ये बाबा की महानता। तो ये तो प्रभु पसंद की बात है, बहुत बातें हैं लेकिन नक्शेल में थोड़ा बताई, ऐसी जग पसंद की कौन सी बात है, संसार से लौकिक हो अलौकिक हो, परिवार वाले हो, हमारे बिजनेस के साथी हो, अज्ञानी हो ज्ञानी हो, हम सबसे हमें कैसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भले हम ज्ञान में नहीं चल पा रहे हैं लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का ये जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये बहुत अच्छे हैं, महान है। किस हमारे गुण से वो इस निष्कर्ष पर आएंगे, बस एक लौकिक में भी वो गुण कहा जाता है सम्मान, तो गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, हर एक को सम्मान दे करके आगे बढ़ाते चले, लौकिक हो अलौकिक हो कोई भी हो, अज्ञानी हो, हमारी बात न माने फिर भी हमारे मन में अगर उसके प्रति सम्मान का भाव कम नहीं होगा तो आज नहीं तो कल वो जरूर बाबा के ज्ञान में खिंचकर आएगा ही। लेकिन होता क्या है, कई बार हमारा रहन सहन खान पान सब अलग हो जाता है, उनसे व्यवहार हमारे शुद्धि आ जाती है, तो हम उनसे कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन हमारा व्यवहार उनके प्रति बहुत सम्मानजनक हो, प्रेम पूर्वक हो, वो चीज उन्हें खींच के ले आएगी। हमने देखा एक बार मधुबन में थे, दोपहर का समय था, दो तीन बजे का समय, तो कुछ सन्यासी लोग गेट से पास हो रहे थे, तब वहाँ गेट पर एक ड्यूटी होती थी भूरी दादी की पहरे पर, तो कुछ सन्यासी वहाँ रुके और उनका जो एक मुख्य था उसने कहा कि मुझे आपके बाबा से मिलना है। तो भूरी दादी ने कहा कि भाई आप जरूर मिलना, लेकिन अभी तो दोपहर का समय है, या तो आप शाम को आइए या सुबह आइए, अभी तो बस बाबा अभी थोड़ी देर पहले ही आराम पर गए हैं और अभी तो मिलना कठिन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अभी मिलना है, क्योंकि हम शाम को तो चले जाएंगे यहाँ से, और हमने सुना है आपके बाबा जो है दादा लेखराज लौकिक नाम से बुला रहा था कि भाई ये कहते हैं कि गीता का भगवान ये कृष्ण नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सारी शास्त्रों के विरुद्ध बात करते हैं, तो हमें इनसे शास्त्रार्थ करना है और अभी करना है। तो बहुत समझाने की कोशिश करी, वो नहीं माने, तो बाबा के पास आई बहन और बाबा से कहा, तो बाबा आराम कर रहे थे, बाबा को कहा बाबा, तो बाबा ने कहा बच्ची कि भाई वो ऐसे है, वो कह रहे हैं अभी मिलना है, तो बाबा ने कहा हाँ कोई बात नहीं बच्चे, उन्हें बैठाओ हॉल में, बाबा आता है। जो बाबा कई बार मुरली में कहता है ना, सेवा हो, हमारे आराम का भी समय हो, कुछ हो, लेकिन सेवा फर्स्ट। तो बहन ने उन्हें बैठाया, थोड़ी देर में बाबा आया, और वो सन्यासियों का नियम होता है जब वो जाते हैं कहीं भी किसी भी आश्रम में, तो वो गुरु की गद्दी अपना अलग होती है, उस पर वो गुरु ही बैठता है, और वो लोग जो भी मिलने जाते हैं वो सब नीचे अलग बैठते हैं, तो वो सब भी नीचे बैठ गए। बाबा आए तो बाबा ने देखा, बड़े प्यार से दृष्टि दी और अरे अरे बच्चे तुम यहाँ क्यों बैठे हो नीचे, तुम तो यहाँ ऊपर बैठो जहाँ तीन संदली पड़ी हुई है हिस्ट्री हॉल में। तो उन्होंने बड़े अभिमान पूर्वक बोला, नहीं नहीं वो तो आपकी गद्दी, आप बैठो, हम लोग यहाँ बैठेंगे। तो बाबा कितना बिल्कुल जो कोई भी अहंकार नहीं, निरहंकारता से बाबा ने कहा, अरे बच्चे देखो ये तो गृहस्थी है अपने लिए, बाबा ने ब्रह्मा बाबा ये तो गृहस्थी रहा जीवन भर, ये गीता भी पढ़ी सब कुछ कहा, और ये तो वो है, और आप लोग तो बाल ब्रह्मचारी हो और आपने भारत को थामा है पवित्रता के बल पर, और आप लोगों का ये है यहाँ बैठो। वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तो बाबा ने जो एक उनका मुख्य था उसको बड़े प्यार से उठाया और उसको वहाँ ऊपर बैठा दिया, और खुद बाबा और बगल में नीचे बैठ गया। तो देखो इस निरहंकारिता से वो जो इतने अभिमान में भरे हुए थे, और कि हम ये करेंगे, ये वो करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, बिल्कुल पानी पानी हो गए। उसके बाद उन्होंने बाबा से थोड़ी देर बाबा ने कुशल क्षेम पूछी, फिर कहा बच्चे कैसे आना हुआ। वो एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि बाबा ने जैसे उनका दिल जीत लिया था, रिस्पेक्ट रिगार्ड ये सम्मान देके। नहीं तो जो सन्यासी का अपना आश्रम होता है ना, वहां पर तो उसका बहुत वर्चस्व होता है। फिर सब एक दूसरे को देखने लगे, बाबा ने फिर बड़े प्यार से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा, हम ऑटोमेटिकली उनके मुंह से बाबा बाबा शब्द निकला, और फिर उन्होंने कहा तो ये कहने आप जो ज्ञान सुनाते हो ये सब शास्त्रों के विपरीत है जो उनका मुख्य था। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये तो खुद शास्त्र पढ़ता था, गीता पढ़ता था, इसमें तो परमात्मा आकर के जो ज्ञान सुनाता है वो ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। अब वो शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया, उन्होंने बताया सारा जीवन भर हमने गीता पढ़ी कि काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया। अब शिव बाबा सुना रहा है, तो थोड़ा ही बाबा ने बोला, लेकिन इतने सम्मान पूर्वक बोला, इतनी आत्मिक दृष्टि से कि उन्होंने कोई शास्त्रार्थ नहीं किया, थोड़ा सा बताया, वो सुन के हाँ बाबा वो, और जैसे संतुष्ट होके चले गए। तो भले वो बहुत विरोधी थे, विरोध के भाव से आए थे, लेकिन बाबा ने दिल जीत लिया तो वो हो गया। तो ये है पूरा गिव रिस्पेक्ट, दूसरा सर्टिफिकेट संसार से प्राप्त करने के लिए केवल सबको सम्मान देते चलो, दूसरी बात। और तीसरी बात, मन, मन जीते जगत जीत कहते हैं ना, और अपने से सर्टिफिकेट, उसके लिए क्या करना है वो भी एक बात। भगवान से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? सच्चा। संसार से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सम्मान देते, गिव रिस्पेक्ट। और अपने से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? अपने से जो बाबा ने कहा है हमेशा, या अपने को देखो, कब हमारी अंतरात्मा खुद हमें धिक्कारती है, कब हम खुद से डिससेटिस्फाई होते हैं, कब होते हैं? जब हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म होता है, ऐसा व्यवहार होता है जो हमारे ज्ञान या मर्यादा के अनुरूप नहीं होता है। बुद्धि में ज्ञान है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर के, कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर कोई ऐसा कर्म हो जाता है तो अपनी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है। भले किसी ने देखा नहीं, कोई हमारा सोशल स्टेटस कम नहीं हुआ, लेकिन अपने आप ही हम अपने को सर्टिफिकेट नहीं देने दे सकते, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए कॉन्शियस बाइट ना करें, हमारी अंतरात्मा हमारे को धिक्कारे नहीं, इसीलिए ये कोई भी कभी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। बस जब मर्यादा का कोई उल्लंघन होता है तो हम अपने को सर्टिफिकेट नहीं दे पाते, तो ये बाबा ने कहा है। तो ये देखते चले अपने से तो क्या होगा, अपने आप भी अपने हमें सर्टिफिकेट मिलता जाएगा। तो ये बातें अगर एंड रिजल्ट बुद्धि में होता है स्टूडेंट को, एंड रिजल्ट बुद्धि में कि मुझे ये साल भर में पढ़ रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन देना है और एग्जामिनेशन इतने 3 घंटे का होगा, या ये उसी के हिसाब से वो तैयारी करता है। तो इसी रीति से हमारा भी ये एंड रिजल्ट, ये 3 सर्टिफिकेट हमें लेने हैं, ये बुद्धि में सदा रहेगा तो हमारी तैयारी भी वैसी होगी और हम बाबा की तरह संपूर्ण कर्मातीत बन जाएंगे। एक ये बात है। और साथ में क्या करें, जो बाबा ने कहा, एक बार गुलजार दादी जी ने संदेश सुनाया था कि दादी ध्यान में गए तो उन्होंने वहां देखा बाबा के सामने 2 लाइन में बी केस थे, दोनों श्वेत वस्त्रधारी थे, बैच लगा हुआ, लेकिन एक लाइन वाले बड़े खुश चेहरे में चमक और उमंग उत्साह में, और दूसरे बीके जो थे वो भी बीके, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, मुरझाइश थी और देखने में और सब रीति से वो भी बीके थे। तो बाबा ने पूछा, बच्ची ये क्या देख रहे हो? तो बताया उन्होंने। तो बाबा ने कहा, देखो जब भगवान एक है, ज्ञान एक है, एक ही समय बाबा ज्ञान देते हैं, सब कुछ है, फिर ये 2 प्रकार के बच्चे कैसे हो? एक बहुत खुशी उमंग उल्लास में और दूसरे उनके चेहरे पर मायूसी। फिर बाबा ने उसका बताया, देखो जो जिनके चेहरे पर बहुत खुशी उमंग उल्लास है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सदा अपने को देखा, बस मुझे बनना है, अपने को देखा, बाबा को देखा और किसी को बीच में नहीं देखा, ये ऐसा क्यों करता है, इसे नहीं करना चाहिए। तो वो तो जिन्होंने अपने को देखा कि मैं अभी ये हूँ और बाबा समान मुझे बनना है, वो तो खुशी उमंग उल्लास उसमें दिखे। और जो दूसरी लाइन के बच्चे हैं, ये वो हैं जिन्होंने सदा दूसरे को देखा। और इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं ना, हमारी दूर की दृष्टि बहुत तेज हो गई है, अपनी दृष्टि उतनी तेज नहीं है। अपने अंदर की कमी कमजोरी हमें नहीं दिखते, दूसरे की कमी कमजोरी हमें ज्यादा दिख जाती है। तो जिन्होंने दूसरों को देखा वो दूसरी लाइन में आ गए, यानी कि वो त्रेता युगी संस्कार अपने अंदर भरते जा रहे हैं। और जिन्होंने अपने को देखा, बाबा को देखा, वो ये पहली लाइन में है। और फिर बाबा ने दिखाया, अभी भी समय है अपने को ये पहचान करके कि मैं अगर दूसरों को देखता रहा तो मैं दूसरी लाइन में, यानी कि दूसरे पुर में त्रेता युगी आत्मा बन जाऊंगा। पर बाबा ने कहा, अभी अपने अंदर ये कॉन्शियसनेस जागृत करो, नहीं मुझे ये पहली लाइन में जाना। तो दिखाया बाबा ने, कई बच्चे दूसरी से पहली लाइन में जा रहे थे, ان کے چہرے پر بھی خوشی امنگ الاس آتا جا رہا تھا. ایک ہم یہ دیکھتے چلے کہ مجھے ایسا بننا ہے. اور بابا نے کیا, بابا ایک بات پر اور وشیش مہتو دیتے تھے. کون سی بات پر؟ ہمارا سب کرمیندریاں ہیں, لیکن بابا کس وشیش کرمیندری پر بل دیتے ہیں؟ کون سا ہمارا وہ کرمنل ہو گئی ہے اور اسے موسٹ پوتر بنانا ہے؟ کون سی؟ آنکھیں. تو واسطو میں دیکھا جائے نا, یہ بہت سوکشم سبجیکٹ ہے. آنکھیں کیا ہے؟ یہ انسٹرومنٹ ہے, یہ دیکھنے کا سادھن ہے. آنکھیں نہیں دیکھتی, آتما دیکھتی ہے آنکھوں کے دوارا. تو یہ ہے درشٹی آنکھ, اور دیکھنے والا آتما وہ ہے درشٹا. دھیان دیجئے گا, وہ ہے درشٹا. دیکھنے والا آنکھیں درشٹی, اور باہر جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ درشیہ. تو درشٹا, یہ تینوں کا جب الگ الگ سمجھیں گے, اور جس نے اس کو پہچان لیا وہ اس کا جیون درشٹانت سوروپ بن جاتا ہے, جس کو کہ پورے اتہاس میں سدا کال یاد کرتے رہے. درشٹانت دیتے ہیں نا جیون میں. تو اس لیے اگر ہمیں کوئی بھی, سورداس نے تو آنکھیں پھوڑ لی, اس نے سوچا کہ بھئی یہ آنکھیں کرمنل ہیں, پوتر نہیں ہیں, ایسا کیوں ہے؟ تو اس کارن سے, لیکن آنکھوں کا دوش نہیں ہے, دیکھنے والے آتما کے اندر جو بھاؤ ہے. اور اسی لیے سورداس نے آنکھیں بھی پھوڑ لی, پھر بھی اس نے جو رچنا کی, بہت بھکتی پورن رچنا کی ہے, لیکن ان سب میں من میں یہی بتایا کہ من کامی ہے, کرودھی ہے, من کے اندر وکار ہے. یعنی کہ آنکھیں پھوڑنے کے بعد نہیں بھی دیکھیں تو بھی وچار تو من میں پیدا ہوتے ہیں نا, شدھ ہے اشدھ ہے یا کوئی بھی. تو اسی لیے یہ ہم سمجھیں کہ میں درشٹا آتما, یہ ان درشٹی کے دوارا اس درشیہ کو دیکھ رہی ہوں الگ. اور الگ کا بھاؤ, جیسے کہتے ہیں یہ میرا پین ہے میرا ہاتھ, تو الگ کا بھاؤ بالکل یہ ہونا چاہیے کہ میں درشٹا ہوں, ان درشٹی کے دوارا دیکھ رہا ہوں. بس جتنا جتنا یہ بھاؤ آتا جائے گا, اتنی اتنی ہماری درشٹی جو پوتر ہوتی جائے گی. اور بابا کا یہی دیکھا, بابا بھی شریر تو پروش کا تھا نا, لیکن پھر بھی کسی کو کچھ نہیں. بچہ بوڑھا جوان استری پروش, بس آؤ بچے, سویٹ بچے, اور بس بابا کی بھاؤں میں چمبک کی طرح کھینچتے چلے آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ درشٹی کی بھی اتنی پوترتا, منشا کی اتنی پوترتا, سنکلپ کی پوترتا, کسی کو دیکھا بھان ہی نہیں رہتا تھا کہ ہم ایک پروش تن میں, دیکھنے میں تو پروش تن ہی آتا تھا نا, اس کے بہوں میں جا رہا. ایک یہ اس بات کو ہم دیکھتے چلے. اور کیا بابا نے جو بتایا ہے ساتھ ساتھ, جو بابا نے یہ کہا ہے نا من کے اوپر, تو من جیتے جگت جیت, جو بابا کی کافی مرلیاں چلی ہیں اس کے اوپر. تو جتنا جتنا ہم اس کے اوپر اپنا نیت, ہم سب سنکلپوں کے دوارا تھوڑا یوگ کرتے ہیں. ٹریفک کنٹرول.
ہمارا
हम बता रहे थे, हमने विशेष क्या बात देखी जो कि एकदम कर्मातीत अवस्था को रिफ्लेक्ट करती थी बाबा को। तो वैसे तो बाबा को हमेशा मिलते थे, बाबा से बात करते थे जैसे बताया, लेकिन एक विशेषता जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है बिल्कुल, तो मन के भावों को वो सहज परख लेती है, दूसरे के मन के भाव। बाबा के पास हम 17 और 18 जनवरी को 5-6 बार गए कि बाबा से हम ये प्रश्न पूछेंगे, ये बात पूछेंगे। बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे थोड़ा सा दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी बाबा मन का प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी दे देते थे। बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, 5-6 बार जब ऐसा हुआ, तो बाद में हमने एक बार जब बड़ी दीदी से पूछा कि बाबा का हमने ये अनुभव किया, तो वो बताते थे देखो जब जो आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो उसके मन के भावों पर संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। जो कहते हैं ना मन जीते जगत जीत, मन के संकल्पों पर, और उसका प्रमाण क्या है कि दूसरी आत्मा के मन के भावों को वो सहज परख लेती है। तो आपके मन में क्या चल रहा है वो अगर हम परखेंगे तभी तो हम आपके मन की इच्छा को पूर्ण कर सकेंगे, और हम दूसरे के मन के भावों को तब परख सकते हैं जब हमारे अपने मन के भावों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण होगा। और इस कारण से बाबा का अपने ऊपर इतना विचारों के ऊपर संकल्पों पर नियंत्रण था, बाबा के सम्मुख जो भी जाता था उसको बाबा से ये अनुभव होता था कि अरे मुझे कहने की भी जरूरत नहीं, बाबा ने मन के बाद मेरे जो मन में प्रश्न था वो हो गया। और इसीलिए ये पार्ट हम सबके द्वारा चलना है, क्योंकि बाबा ने कहा अंत में आत्माएं आपके पास आएंगी, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए शांति की स्थिति का अनुभव करती जाए, भक्त आत्मा आए अपने अपने इष्ट देव के साक्षात्कार की इच्छा लेकर के आएंगी, लेकिन हमारे द्वारा उन अनेक आत्माओं को अनेक साक्षात्कार होंगे। जो गणेश का भक्त होगा उसे गणेश का साक्षात्कार होगा, जो देवी का भक्त होगा उसे देवी का साक्षात्कार होगा, जो जैसा होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा आप सबने जीवन में पढ़ा है ना, अब शुरू में कई अपोजिशन थे, तो एक बार एक सरदार आया छुरी लेकर कि मैं बाबा को मारूंगा, क्योंकि हमारे ज्ञान से सब सहमत नहीं होते थे। लेकिन जब बाबा के पास अकेला कमरे में था, छुरी भी थी, और जब मौका देखा उसने, ये अच्छा मौका है, तो अपना छुरी निकाल के बस बाबा पर वार करने ही वाला था, तो क्या साक्षात्कार हुआ, बाबा की आत्मा तो कृष्ण की आत्मा है लेकिन उसे साक्षात्कार हुआ गुरु नानक देव जी का, क्योंकि गुरु नानक उसके इष्ट देव थे, उसमें उसकी भावना थी। और जैसे उसे साक्षात्कार हुआ बस उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, छुरी हाथ से गिर गई, अरे गुरु जी मैं क्या करने वाला था, आपका मैं वध करने वाला था, क्योंकि हम वो ही है, हम उसके इष्ट देव है, लेकिन भक्त की जो मनोकामना होगी हमारे द्वारा शिव बाबा भक्त की वो मनोकामना पूर्ण कराएगा, तभी तो उसकी वो भावना बैठेगी। तो इसीलिए, और ये तब होगा जब हमारे अपने मन के अंदर कोई संकल्प नहीं होगा, हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगी, कोई भी इच्छा नहीं होगी। तो एक तो ये होना चाहिए जो बाबा से दिखा 18 जनवरी का, मुझे याद है बाबा मुरली 18 जनवरी की रात्रि को चला रहे थे और हम सामने बैठे हुए थे, थोड़े लोग थे, 25-30 लोग, तब तो बहुत कम, जनवरी मास था, बहुत सर्दी का मौसम था, तो बस मुरली सुनते सुनते हमारे मन में एक इच्छा, अरे क्या ही अच्छा हो, बस बाबा से, बाबा हमारा नाम लेके कोई हमारे प्रति डायरेक्शन दे दे जो हमारे जीवन के लिए सदा मार्ग प्रदर्शना बन जाए। तो बस हमारे मन में संकल्प हुआ और जैसे ही बाबा तक पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही जैसे हमारे मन की इच्छा नाम लेकर के मुरली में, और उसके बाद बाबा ने हाँ ये बच्चा ये है ऐसा करे, बस पूरा बाबा ने जैसे कि उसके अंदर वर्णन कर दिया। तो तो ये इच्छा मात्रम अविद्या चूंकि बाबा बन गया था, इसीलिए दूसरों की इच्छा सबकी संपूर्ण करने का जैसे बाबा का लक्ष्य था। और क्या देखा अंत में ना, जब कई बार बाबा के पास जाते हैं तो जो बाबा कहते हैं सेकंड में शरीर में आने का अभ्यास हो, सेकंड में शरीर से अलग होने का। पार्टी आती थी, ब्राह्मणी पार्टी लेकर जाती थी बाबा के पास, बस बाबा बैठा भी है, आंख भी खुली है, लेकिन जैसे शरीर में बाबा है ही नहीं। तो टीचर जब बोलते थे बाबा बाबा, तो बाबा को जैसे कई बार जर्क सा लगता था, है बच्ची, अच्छा अच्छा पार्टी लेके आए हो, अच्छा अच्छा बैठो बैठो, बिठाओ बच्चों को। और फिर जैसे बाबा देह में आता था, देह में आके बच्चों से मिले, पार्ट बजाया, टोली खिलाई, हालचाल पूछा, जो भी डायरेक्शन होती थी देते थे, उसके बाद फिर बाबा देवान देह से जैसे न्यारे हो जाते थे। प्रैक्टिकल ये देखने में आता था कि बस बाबा अभी नहीं है और बाबा ऊपर है, फिर कार्य व्यवहार के लिए शरीर में आए, पार्ट बजाया, फिर बाबा ऊपर चला गया। एक ये अभ्यास पक्का करने की जरूरत है कर्मातीत अवस्था के लिए। और साथ में क्या, 18 जनवरी की आप मुरली सुनो ना, पूरी मुरली में एक बार भी बाबा को खांसी भी नहीं आई, जबकि बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। 18 जनवरी की सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई, बस बाबा आए, योग कराया, शक्ति दी और बस पूरा 1.25 घंटे तक योग करा के बाबा चले गए। लेकिन रात्रि को ना, रोज क्लास 9 बजे होती है, उस दिन बाबा ने भाई को बुलाया, हमारे जमुना प्रसाद भाई, तो उनको बुला के कहा आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा तो सबको इन्फॉर्म कर दो। तो बाहर एक घंटा रखा रहता था, उन्होंने बजा करके सब इकट्ठा जब हुए तो उन्होंने बताया कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएंगे, तो सभी लोग भोजन वोजन करके 7:30-8 इकट्ठे हो गए। तो देखो जब कर्मातीत अवस्था के निकट आत्मा होती है ना, तो उसे पहले से ही आभास हो जाता है, बस इच्छा मृत्यु, जैसे भीष्म पितामह का कहते हैं ना, बस पहले से ही, तो बाबा ने पहले ही उस दिन क्लास करा के, नहीं तो हमेशा से मधुबन में 9 बजे क्लास होती है, लेकिन पहले से बाबा ने सबको बुला के बाबा फिर क्लास में आए और बस बाबा का ऐसा स्वरूप दिख रहा था बिल्कुल फरिश्ते का, लाइट 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 लाइट, जैसे लाइट ही चल रही है। लेकिन उस दिन जो मुरली बाबा ने चलाई, एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न कोई गला साफ करने की जरूरत पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि अंत समय जब कर्मातीत अवस्था को आत्मा प्राप्त होती है तो शरीर के कर्म भोग के ऊपर योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। फिर शरीर का कोई भी कर्म भोग उसे परेशान नहीं करता, क्योंकि कर्म भोग के ऊपर योग बल ने विजय प्राप्त कर ली। पूरा बाबा ने एक बार भी न खांसी आई, न कोई शरीर की तरफ से व्याधि हुई, उसके बाद बाबा उठ के खड़े हुए हैं, बस फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे। एक एक बच्चे को, सामने बड़ी दादी जी बैठे हुए थे, बार बार बाबा की दृष्टि दादी के ऊपर पड़ती थी, कंटिन्यूस दादी को दृष्टि देते थे, फिर एक एक बच्चे को बाबा की, आज मैं इन बच्चों को संपूर्ण रीति से जैसे शक्ति से भर दूं, क्योंकि ये तो आभास था कि शिव बाबा को कि आज ये साकार तन के द्वारा मेरा बच्चों से ये अंतिम मिलन है। बाबा शिव बाबा तो जानी जाना रहे, जानता है। फिर बाबा दृष्टि देके फिर एक दो कदम बढ़े, फिर रुक गए, फिर बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे, फिर दृष्टि दे करके बस चेहरे पर हुई मुस्कान, फिर बाबा एक दो कदम बढ़े, फिर रुक गए, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे। ऐसे 4-5 बार बाबा जैसे ना, बाबा जा रहे हैं बाहर, लेकिन बार बार बाबा को, आज मैं बच्चों को शक्तियों से संपन्न कर दूं दृष्टि दे करके। फिर इसके बाद बाबा दरवाजे के पास जाके बाबा ने क्या कहा, कई बार मुरली में सुना होगा ना, अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है, छुट्टी लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे, उसी दिन कहे कि बाबा बच्चों से विदा लेता है, छुट्टी लेता है। उसके बाद तो बाबा गए और सब जानते हैं, दादी के हाथ में हाथ देते हुए शक्तियों का दान करते बाबा ने, छुट्टी रेडी शरीर से जैसे न्यारे हो गए अनब। लेकिन असली विशेषता जो बाबा कहता है कि हमें अपने को पवित्र बनाना है, सृष्टि की आत्माओं की सेवा करनी है, उन्हें पवित्र बनाना है और प्रकृति के पांच तत्वों को पवित्र बनाना है। तो ये देखा कि बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, 18 जनवरी की रात भर शरीर रखा रहा, 19 तारीख को पूरे दिन भर रखा रहा, 19 की रात को रखा रहा, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन न कोई बाबा को इंजेक्शन दिया गया, न शरीर में कोई दवाई लगाई गई, कुछ नहीं। लेकिन बाबा का शरीर वैसे बिल्कुल चमकदार हुआ, न कोई उसमें दुर्गंध आई और न शरीर के में अकड़ा। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, तो शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। हम लोगों ने देखा बाबा को स्नान कराया 21 तारीख को संस्कार से पहले, लेकिन बाबा का शरीर वैसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल। हमने बहुत डॉक्टरों से पूछा बाद में कि क्या ऐसा संभव है, कहते नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर तो अकड़ जाता है। जब तक मतलब वो बिल्कुल और उसमें इंटीग्रेशन, अगर कोई इंजेक्शन नहीं दे, दवाई नहीं लगाए, लेप न लगाए, तो उसके अंदर तो वो शरीर वो होने लगेगा, दुर्गंध देने लगेगा। लेकिन हम तो खुद साक्षी हैं, देखा बिल्कुल कुछ नहीं। तो ये बस लगता था बाबा जैसे सोया हुआ है, और हमेशा की तरह बाबा बस उठ के कहेगा, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ, चमकता हुआ शरीर वैसे। तो ये प्रकृति पर विजय का प्रतीक है, क्योंकि हमारा शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों का बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। और इस कारण से, इन तत्वों का बने होने के कारण, बाबा ने इस शरीर के भी तत्वों को इतना पवित्र कर लिया था कि अंत समय तक इन तत्वों ने पूरा का पूरा साथ दिया, और 72 घंटे तक शरीर रखा रहा, 70-72, लेकिन शरीर के अंदर कोई भी डिसइंटीग्रेट, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जो लौकिक रीति से हर मनुष्य में, डॉक्टर कहते हैं ये असंभव है, हो ही नहीं सकता, लेकिन वो तो संभव क्या, प्रत्यक्ष दिख रहा था जो बाबा का शरीर ऐसा बिल्कुल तरोताजा और वैसा ही रहा। तो भाव क्या है कि ये भी हम सबको भी प्रकृति जीत बनना है, जो बाबा कहता है, देखो पांच तत्व। अभी भी जब कभी कहीं भूकंप आता है ना, या कोई भी ऐसी व्याधि जहां हजारों लोगों शरीर छोड़ देते हैं, तो बाबा ने कहा है ना कि उन आत्माओं को शक्ति का दान दो। क्या तुम्हें उन बच्चों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती कि भाई बचाओ, शक्ति दो, शांति दो, और ये, और खास करके जब ऐसी कोई व्याधि आती है, जब कोई ये ऐसा प्राकृतिक आपदा आती है, अभी कितना बड़ा जापान में भी 2 दिन पहले आया, कितनी बड़ी व्याधि आई उससे पहले न्यूजीलैंड, तो हम आत्माओं का सबका ये कर्तव्य है कि हम ऐसे वक्त तो विशेष उन आत्माओं को शांति का, शक्ति का, उन सबका दान देते रहे। ऐसे समय उन्हें बहुत आवश्यकता है, और जैसे ही हमें पता न भी चले, लेकिन वो शांति शक्ति के वाइब्रेशन उन तक पहुंचते हैं, और वो आत्माओं को काफी संतुष्टि का, रिलीफ की महसूसता होती है। तो ये है प्रकृति जीत का प्रतीक, जो हम सबको भी शरीर तो छोड़ना है, लेकिन उससे पहले हम इन प्रकृति के तत्वों पर विजय प्राप्त करके ऐसा बन जाए कि हम इच्छा मृत्यु हो हमारी। बस जैसे बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है, छुट्टी लेता है, सारे इंडिकेशन ये थे, अब बाबा जा रहा है। लेकिन मृत्यु के नाम से लोगों में जैसे भय होने लगता है, कोई नहीं चाहता जितना भी शरीर पुराना हो कि छोड़े, लेकिन बस सारे वो होते हुए भी बाबा को, हाँ अब बाबा बस हम कर्मातीत बन गए, हम आपकी बाहों में आए, हम गोदी में आए, बस मैं आत्मा ये बंधन मुक्त हो रही हूँ, खुशी खुशी हम अपना शरीर छोड़े। तो ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ है, जो बाबा का भी रहा और बाबा इसी प्रकार से कर्मातीत बन गया। बहुत बातें हैं, लेकिन मैं यहीं पर ही समाप्त करना चाहूंगा, और ये चाहूंगा कि हम सब लोग यही पुरुषार्थ करें कि ये है। कुछ अनाउंस करना है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, ओम शांति, ओम शांति।